समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। याद कीजिए 19 जून 2019 की वो तारीख जब चेन्नई शहर में डे जीरो घोषित हुआ गया था। ये वो दिन था जब चेन्नई में लगभग नहीं के बराबर पानी बचा था, क्योंकि शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले सभी चार मुख्य जलाशय सूख गए थे। क्या अब भी हमें सचेत होने की जरूरत नहीं है? सोचिए, जब हमारे घर में एक दिन पानी नहीं आता तो पानी पीने से लेकर खाना बनाने और नहाने धोने तक के सारे काम रुक जाते हैं। क्या तब भी हमें पानी की कीमत का एहसास नहीं होना चाहिए? पानी अगर सच में खत्म हो गया तो ये जीवन कैसे चलेगा? जल ही जीवन है के मंत्र को सिर्फ रटना नहीं बल्कि आम जीवन में अपनाना भी होगा। इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए सरकार ने इस दिशा में कई पहल की हैं। कल विश्व जल दिवस था और हम भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए आज पब्लिक स्पीक में इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है भविष्य में सतत जलापूर्ति के लिए जल संरक्षण का महत्व। और इस चर्चा के लिए आज हमने जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दो विशिष्ट व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया है। रेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध अशोक कुमार जी तथा जल योद्धा के रूप में विख्यात पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड लगाकर 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा 9289-0944। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आप लोगों की फोन कॉल्स का इंतजार है। सबसे पहले अशोक जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने देश में कैच द रेन अभियान का नेतृत्व किया, कैच द रेन अभियान की मूल सोच क्या थी?
धन्यवाद जी। कैच द रेन का मूल्य सबसे बुनियादी पॉइंट था कि डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटाइज्ड कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। बारिश बहुत आती है, बारिश के पानी जॉम्बली क्या होता है कि वो बह के चले जाते हैं, कई जगह पे बाढ़ में तबाही करके चले जाते हैं। क्यों ना इस पानी को हम संचय करके रखें और 5-6 महीने के बाद जब सूखा पड़ जाते हैं, हमने देखा कई जगह पे पानी के प्रॉब्लम समस्या बन जाते हैं एंड पीपल रन अराउंड फॉर टैंकर्स। तो इफ द एक्सेस वाटर कमिंग ड्यूरिंग द रेनफॉल इज स्टोर्ड एंड यूज्ड फॉर 6 मंथ्स लेटर, देन देयर विल बी एक साइकिल ऑफ इट। इसलिए कैच द रेन कैंपेन का मूल मंत्र ये भी था कि कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये हम बड़े बड़े डैमों की बात नहीं कर रहे हैं, जहां बरसे जब भी बरसे पानी को वहीं के वहीं संचय कर देना, दैट इज व्हाट द आइडिया।
जी, सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि ज्वालिया जी। हेलो।
हाँ सर, मैम नमस्कार।
नमस्कार।
मैं रवि ज्वालिया और गणवीरपुर हरिद्वार से हूँ और सभी महानुभाव को नमस्कार। कल जल दिवस था, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं लेटी सही, और कल अक्षय दिवस है, टीवी दिवस, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि जल संरक्षण के लिए अस्थाई उपाय क्या है, और वैसे भी मेरा ये अपना अनुभव है कि अगर कहीं भी टंकी चल रही होती, कोई नल चल रहा होता, मैं उसे बंद कर देता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ इसका अस्थाई समाधान क्या है, क्या हम वर्षा का जल बचाकर भी जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं? धन्यवाद।
इसका अस्थाई समाधान क्या है कि
नहीं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जन भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हर बूंद को कंसर्व करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, इसमें जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे इन्होंने बताया, रवि जी ने बताया, रनिंग टैप वो बंद कर देते हैं, देन इट इज व्हाट इज बीइंग सेड, सो एवरीबॉडी शुड फील रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स में तो द मोस्ट फंडामेंटल इश्यूज विचारधारा या सोच की बात है. वी शुड हैव फीलिंग दैट वाटर इज नॉट ए फाइनाइट रिसोर्स, इट्स ए फाइनाइट रिसोर्स, नॉट इनफिनाइट रिसोर्स. तो जितना पानी हम संचय करके रखेंगे, जितना पानी हम वेस्ट होने से बचाते हैं, दैट इज द गेन वी हैव एंड दैट इज वॉट द गिफ्ट वी कैन गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन.
और असीमित भंडार नहीं है, हमें आज के लिए तो सुरक्षित रखना है पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसका संरक्षण करना है. उमा शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने सूखे की विभीषिका झेलने वाले बुंदेलखंड के जखनी गांव को जलग्राम बना दिया.
बहुत बहुत धन्यवाद जी. समुदाय के आधार पर पुरखों के जो जल जोड़ने के तरीके थे वो मेरा मंत्र था, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़
जी.
मैं अकेले तालाब नहीं बना सकता, मैं अकेले नदी नहीं खोज सकता, मैं अकेले कुआं नहीं बना सकता, लेकिन वर्षा का जो सिद्धांत है कि वर्षा की बूंदें जहां गिरें वहीं रोकें, खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, क्योंकि पानी साल में नहीं दो साल बरसेगा कोई बात नहीं है, लेकिन मिट्टी नहीं बरसती. और ये पानी जब आगे बढ़ जाता है 10 मीटर आगे तो उसके रोकने का प्रयास अनाधिकारी हो जाता है. ऐसे में समुदाय के आधार पर जो मेड़बंदी यज्ञ अभियान है, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन से मैं प्रेरित होकर, भारत रत्न नानाजी देशमुख ने जो प्रयास मेरे बुंदेलखंड में किया था उन्हीं से प्रेरणा लेकर किसानों ने बगैर किसी सहायता के फावड़ा उठाया और अपनी डलिया उठाई और जखनी गांव से जो जल संरक्षण का मंत्र पूरे देश में गया वही हमारे काम की आगे गांव में ग्राम जलग्राम बनाने का काम या अन्य जो सरकार ने सामुदायिक प्रयास किए हैं उनका केवल यही एक छोटा सा उदाहरण है
जी. एक और श्रोता हमारे दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी. नमस्कार धर्मवीर जी, स्वागत है आपका.
नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को हमारे नमस्कार.
एक धर्मवीर जी आपसे अनुरोध है कि आप अपने जो आपका रेडियो है उसका वॉल्यूम कम कर दें.
हाँ जी, मैं दूरी जी. तो एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार. मैं दो बातें आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग तो शहर में रहते हैं और पानी, बरसात का पानी हम कैसे, सड़क तो सारी जगह पक्की है, हम अपने क्या ऐसा स्रोत बनाएं कि पानी जो बरसात का जो जमीन में जाए और जमीन की पानी की जो कमी है वो पूरी कुछ कम हो. और दूसरा सवाल मेरा ये है, एक हमारे जानकारी में है जम्मू में एक हमारे वो ब्लाइंड है, ब्लाइंड होने के बाद भी वो उनकी क्षेत्र तक पानी नहीं आता, उनको डेली नीचे आना पड़ता है, फिर वो पानी हर चीज के लिए पानी, गायें पाल रखी उनके लिए पानी, पीने के लिए पानी, कपड़े धोने हर चीज के लिए उनको पानी चाहिए. उन क्षेत्र में डोडा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था वहां तक कैसे पहुंचाई जाए, सरकार की तरफ से मेरा अनुरोध है वहां भी ध्यान दिया जाए. ये दो बातों का कृपा करके आप उत्तर दीजिए क्योंकि वो ब्लाइंड है पहले से
जी. मैं सबसे पहले तो यही कहेंगे क्योंकि जो भूजल अवशोषण के लिए कच्ची मिट्टी चाहिए होती है और शहरों में जो पक्की सड़कें हैं और उस समय कैसे संचय किया जाए.
मेरा बहुत धर्मवीर जी आपने अच्छा प्रश्न किया है. एक तो यह है कि जो बरसात का पानी आपके छत में गिरता है, शहरों में गांव की तरह जमीनें नहीं हैं, तो एक तो प्रयास आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी छत 40 मीटर की है तो मान के चलिए कि अगर 500 मिलीमीटर वर्षा भी हो रही है तो 20,000 लीटर पानी छत पे आपके बरसता है, एक तो आप उसको रोक सकते हैं. दूसरा छोटा सा उपाय है, आप नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सब्जी धो रहे हैं, चावल धो रहे हैं, इनका जो भी पानी बचता है इसको पेड़ में डाल दें, एक प्रयास तो यह है. दूसरा आपने कहा कि जो दिव्यांगजन मित्र हैं जिनको पानी का संकट है वहां तक अगर वो गांव में हैं तो सरकार की कल्याणकारी योजना हर घर जल नल निश्चित पहुंची होगी या पहुंचने वाली होगी. इस संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन से भी सरकार की योजना है, खंड विकास अधिकारी जी हैं वो इस संबंध में, ग्राम प्रधान जी हैं इस संबंध में, उनकी मदद कर सकते हैं
जी. अशोक जी आप क्या
देखिए, अर्बनाइजेशन में इसे मेजर प्रॉब्लम फॉर दिस वाटर का जो इश्यूज अर्बन एरिया में आता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दी डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल. इसके वजह से पानी नीचे नहीं जाता है बिकॉज वो पानी का जो ग्राउंड वाटर ग्राउंड में जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीटाइजेशन, टाइलिंग और हार्ड हो जाता है. तो वॉट वी आर सजेस्टिंग इज, जैसे पांडे जी ने बताया, एवरी रूफ टॉप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना के आपके प्लॉट के एक कोने में यू कैन मेक अ स्मॉल ओपनिंग जिससे पानी अंदर भूमि के अंदर जा सकते, उसे प्रबंधन करना है. सेकंड, अर्बन एरिया में सी मोस्ट ऑफ दिस अर्बन एरियाज हैव सुवेज होता है ना, सुवेज यानी मोस्ट ऑफ दिस अर्बन एरियाज में सुवेज का प्रॉब्लम है. सुवेज वाटर को ट्रीट करके वी कैन यूज दैट फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पसेस. तो उसकी वजह से क्या होता है कि यू आर जो पानी हम अच्छा पानी हम कार धोने के लिए या फॉर अदर पर्पज नॉन पोर्टेबल पर्पज में यूज करते हैं उसको उसमें यूज करते हैं. देन योर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड वाटर फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पज विल कम डाउन. ये दो तरीके से वी कैन कंजर्व वाटर, वन बाय स्टोरिंग एज मच रेन वाटर.
अच्छा, जैसे कई घरों में छत ना हो या किसी कारणवश वो छतों पर इसका व्यवस्था ना कर पाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
ऐसे में वो जहां भी उनके सामने का अगर जमीन है, कच्चा मकान है, तब भी अपने मकान को जमीन को खोद करके बालू ईंटा कंक्रीट थोड़ा सा डाल के उसको बराबर कर दें और एक पाइप डाल दें. पांच बाई पांच का गड्ढा बनाना है. और मुझे ऐसा लगता है चूंकि प्रयोग हम लोगों ने उसमें किए हैं, तो जो भी वर्षा का पानी आएगा वो सीधे जमीन के माँ पृथ्वी माता के पेट में चला जाएगा.
जी हाँ, एक और श्रोता जुड़े हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी. हेलो, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं रमा शंकर जी? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे. एक और प्रश्न था कि जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो उन तक पानी की मतलब पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए किस तरह से वो प्रयास कर सकते हैं?
जैसे पांडे जी बताइए.
जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि एक तो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, सरपंच हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, दूसरा हर राज्य में स्पेशल ब्लाइंड के लिए दिव्यांग जन के लिए डिपार्टमेंट है. लेकिन यह विषय पानी का है तो पहले तो वो सीओ हैं नगर पंचायत के, अगर वहां तक जल जीवन मिशन पहुंच गया है तो उनको पानी मिलेगा और मिलना भी चाहिए, राइट है पानी मिलने का. और वो दिव्यांग जन है तो उनके बारे में तो और गंभीरता से पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी हमें जरूर मदद करनी चाहिए. तो ये जो आकाशवाणी के माध्यम से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उसको सुन रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान होगा.
दिल्ली से ही एक और श्रोता जुड़े हैं, संजीव जी.
आप सभी को मेरा नमस्कार सर. मैं संजीव कुमार उत्तम नगर नई दिल्ली से बोल रहा हूँ. सर मैंने देखा है कि ये सारी अकाउंटेबिलिटी वगैरह की जहाँ बात आती है, मैं देखता हूँ रोज दफ्तर जाता हूँ सर घर से, तो मैं देखता हूँ कि जो अंडरग्राउंड वाटर है या फिर पीने योग्य जो वाटर है वो कहीं नलका खराब होता है, कहीं पानी बहता रहता है, कहीं पाइप फटा होता है, वो सड़कों पे आता रहता है, कहीं पानी ले जाने वाले जो टैंकर होते हैं उससे पानी छलकता रहता है, जो कि एक पीने योग्य पानी होता है. और इसकी जो बर्बादी है सर, इसके लिए क्या अकाउंटेबिलिटी है हमारी सरकार?
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिलेवेंट पॉइंट आपने बोला. मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज में तकरीबन 30-40% वाटर वेस्टेज होता है, इसको नॉन रेवेन्यू वाटर बोलते हैं. जैसे आपने बताया पाइप में कई पाइप से लीकेज होते हैं, नल से जो हमारा पब्लिक टैप से लीकेज होते हैं, वाटर टैंक से लीकेज होते हैं, सब होते हैं. तो हेयर अकाउंटेबिलिटी ना दी वाटर सप्लाई जो बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में तो दिल्ली जल बोर्ड हर शहर में जो वाटर सप्लाई एजेंसी है उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर होना चाहिए कि उनका नॉन रेवेन्यू वाटर कम हो, मतलब अनअकाउंटेबल वाटर शुड बी रिड्यूस्ड. देर आर कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में 4-5% है नॉन रेवेन्यू वाटर,
4-5%
हमारे यहाँ पे 40% है. तो सेकेंड, बट इसमें वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पीपल्स पर्सपेक्टिव इज दैट, तो हम क्या करते हैं, हम पानी का बिलिंग ठीक से नहीं करते बिकॉज आपको डरते हैं कि अगर बिल मीटरिंग करेंगे तो बिल आएंगे तो पैसा देना पड़ेगा. वेदर इट इज कनेक्टेड विद मिलिंग नॉट, वी शुड एंश्योर दैट प्रॉपर मीटरिंग ऑफ वाटर जो तो जो सोर्स से वाटर टैंक जो वेयर एवर द वाटर सप्लाई बिगिंस वहां पे भी एक मीटर फिक्स करना है और हर घर में भी जहां पे पानी यूज करते हैं वहां पे मीटरिंग करना है एंड वी शुड फाइंड आउट व्हाट द लॉसेस कमिंग इन एंड इसको अकाउंट करना है।
बिल्कुल, और जागरूक नागरिक होने के नाते आप भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर इस तरह की आप देखें कि जल बह रहा है तो आप संबंधित विभाग में कॉल कर सकते हैं। अब तो कई माध्यम है, सोशल मीडिया पर भी आप उनको
फोटो लेकर भेज सकते हैं
जी। राजू जी जुड़े हैं हिसार से।
नमस्कार जी।
नमस्कार,
मैं गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल जिला हिसार
जी।
जी मेरा प्रश्न ये है, जिस तरह घर के मुख्य नाली के आगे बोर कर दे जमीन में और 10-12 फुट का पाइप लगा के नीचे पानी भेज सकते हैं
जी। आपका प्रश्न अच्छा है। हमारे जो पानी जाने का सिस्टम था और नाली के बीच में अगर पाइप डाल के नीचे सीधे जमीन पर ले जाएं, ये अच्छा है, ये आपका सुझाव अच्छा है। और हर हम कह रहे हैं 100-100 मीटर पे भी ऐसा प्रबंध कर दिया जाए तो एक नई तरीके का वाटर कंजर्वेशन की कुछ शुद्ध छन के पानी पृथ्वी माँ के पास जाएगा। ये अच्छा प्रयास है आपका और इस प्रयास पर हम लोग भी कोशिश करेंगे आपके इस प्रयास को आगे बढ़ाएं
जी। हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रमा शंकर वाजपेयी जी। जी रमा शंकर जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार,
मैं ये कहना चाहता था कि जैसे मतलब बरसा का जल हम कैच करते हैं और उसको हार्वेस्टिंग के टाइप में से गड्ढा खोद करके उसमें बालू डाल के और ये सब तो हम करते हैं, परंतु जो पुराने जमाने से नहरें थी, नदियां थी, नहरों को पाट करके जो है शहर बना दिए गए हैं, इनके प्रति क्या सरकार कर रही
है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम प्रधानमंत्री जी ने 2021 में कैच द रेन कैंपेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन करके एक अभियान शुरू किया था। उसमें पानी संचय के साथ साथ और 3-4 मेन पॉइंट्स में काम हुआ। एक तो हमारे पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड सब देखे, जहाँ पे पहले तालाब थे या वाटर बॉडी थे उसको चिन्हित करने के करके रखने के लिए बात हुई थी। बहुत कई जगहों पर पब्लिक 1950s, 1940s, 1945, 1950s के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड उसको देखे, पब्लिक बोलते थे कि यहाँ पे पहले एक तालाब था, यहाँ पे एक छोटा सा कुंड थे, ये ऐसे एरिया जहाँ पे एनक्रोचमेंट हुए हैं उसी को वापस जाने की कोशिश की थी। तो डिसअपियरिंग ऑफ वाटर बॉडीज शहरों में गांव से ज्यादा है क्योंकि रियल एस्टेट के लैंड के वैल्यू बढ़ गया है। तो मेनी ऑफ द अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम अर्बन रूरल एरियाज में भी है जहाँ पे जो पहले तालाब एक्सिस करते थे उसको फिलअप करके डेब्रिस डाल के पूरा शैलोनेस कम कर दिया। तो जल शक्ति अभियान में हमने एक तो चिन्हित करके रखने की बात की थी, सेकेंड तालाबों की गहरीकरण का भी बात की थी, थर्ड पॉइंट हमारे पुराने जमाने में हर टेम्पल या जो मस्जिद है इसके अटैच एक तालाब हुआ करता था, तो तालाब हुआ करता था तो उसको भी दोबारा रिवाइव करने का भी प्रयास किया गया था।
तो बहुत कुछ था जैसे टांका, बावड़ी, कुंड, कुएं, तालाब, मतलब आज धीरे धीरे काफी लुप्त हो रहे हैं लेकिन फिर से इनिशिएटिव लिया जा रहा है उनको रिवाइव करने का। आगरा से जुड़े हैं राजू लवानिया जी। हेलो राजू जी।
जी दीदी नमस्कार और विशेषज्ञ भोजक नमस्कार।
राजू जी कृपया रेडियो की आवाज कम कर दें वरना हम आपको सुन नहीं पाएंगे। जी
जी दीदी, मैं आगरा उत्तर प्रदेश राजू लवानिया बोल रहा था
जी।
मेरा सवाल ये है, जैसे अभी बता रहे थे विशेषज्ञ महोदय कि अगर कहीं आपको जल बहता दिखाई दे जो कि बर्बादी की ओर जा रहा हो तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं, तो क्या हम किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और क्या हमारी कंप्लेंट जो है वो गुप्त रखी जाएगी?
देखो जल शक्ति अभियान के समय में हमने एक एक एक, एक नया प्रयोग भी किया था, हर जिले में एक जल शक्ति केंद्र स्टार्ट करने का। ये जल शक्ति केंद्र में जल के बारे में जितने भी शिकायतें हो सकते हैं उसको दर्ज करा सकते हैं और जल के जो मैट्रिक कितना पानी आ रहा है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर में कितना पानी यूज कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना पानी यूज कर रहे हैं, ये सब जानकारी अभी तक क्या था कि पानी के अनेक डिपार्टमेंट हैंडल करते थे, तो किसी के पास जिला में जितना पानी का उपयोग उसके बारे में कोई कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो जल शक्ति केंद्र अभी जो जिस हर डिस्ट्रिक्ट में खुले हुए हैं, अब मेरे ख्याल में हर म्यूनसिपैलिटी में भी खुले हुए हैं, उनका नंबर देके उनसे बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे, वो दे विल कीप योर इन्फॉर्मेशन गोपनीय भी रखेंगे और वो जहां पे भी लीकेज होते
हैं उसके कार्य भी करेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं रशीद अहमद खान।
नमस्ते सर।
नमस्कार, स्वागत है आपका।
मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान। आप सब लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
जी धन्यवाद।
एक शख्स मिला मुझे कल कड़ी धूप में, पानी की आरजू में लहू बेचता हुआ। पानी का निश्चित रूप से बहुत ही महत्व है, अपन विकास भी बहुत कर रहे हैं, चारों तरफ कंक्रीट की रोडें बनती जा रही हैं, इससे पानी का लेवल थोड़ा सा जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा, इसका कोई परमानेंट सलूशन हो सकता है क्या है सर?
जी उमा शंकर,
रोडें भी बनती जा रही है, भी होता रहे और पानी का लेवल भी बढ़ता रहे,
बहुमूल्य संसाधन।
राशिद जी, जल सामूहिक संपत्ति है, नदियों की हद और सरहद नहीं होती है, सरोवर हमारी धरोवर है। आप छतरपुर छत्रसाल की नगरी से हैं, स्वाभाविक रूप से आपने अच्छी बात कही है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि बुंदेलखंड में सुख दुख में, उत्सव में, दंड में भी तालाब बनाए जाते थे, और वहां की एक कहावत है कि छत्ता तोरे राज में दिग दिग धरती होए, चित चित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। आप सब समझदार हैं, हम सबको मिलकर के गांव का पानी गांव में रखना है, घर का पानी घर में रखना है और खेत का पानी खेत में रखना है। जो विकास हो रहा है इससे कंक्रीट की सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारा छतरपुर टीकमगढ़ खजुराहो उस इलाके में बहुत काम करने की संभावना है। आप सब अच्छा काम भी कर रहे हैं, यह भी हमें पता है।
तो देखा जाए तो क्योंकि भूजल हम देखा जाए बहुमूल्य संसाधन है हमारा अशोक जी, क्योंकि अपार्टमेंट कल्चर है और सोसाइटीज बन रही हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए खुदाई होने से जो भूजल का स्तर है वो और नीचे जाता जा रहा है, तो उनको रिचार्ज करने के लिए
देखो इसपे हम दो तीन स्टेप ले सकते हैं। एक तो 100% एरिया में कॉन्क्रीट डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो छोटा से कोने में जहाँ पे स्लोप में पानी लेके चके वहां पे एक छोटा सा एरिया ओपन रख सकते हैं जहाँ पे पानी अंदर नीचे भूखे अंदर जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। आजकल पोरस कॉन्क्रीट भी आता है, मतलब जो पानी नीचे भेजने वाला कॉन्क्रीट भी है, तो पोरस कॉन्क्रीट भी आजकल
छेद
होंगे। एंड नाउ यू कैन सी दैट इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाते हैं उसमें गैप से पानी नीचे जाते, तो कई तरीके हैं जहां से पानी का सेविंग ग्राउंड में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
अगर उमाशंकर जी सिंचाई की बात करें, क्योंकि वहां भी कई पानी का उपयोग होता है और बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि एक किलो चावल उगाने में तकरीबन 2000 लीटर या शायद उससे भी ज्यादा पानी लगता है, तो धान के अलावा चाहे गन्ने की खेती हो, केले, कई फसलों के लिए अत्यधिक पानी की जरूरत होती है, ऐसे में हमारे किसान भाइयों को आप क्या विकल्प अपनाने का सुझाव देंगे?
हमारे देश में 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिनमें से 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में हम खेती करते हैं, अशोक जी अभी जो कह रहे थे उसमें 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए हमारे पास सिंचाई के साधन है, 9 करोड़ हेक्टेयर भूमि अभी या तो वर्षा जल या तो भूजल इस पर आधारित है। ऐसे में किसान ऐसी फसल उगाएं जिसमें रसायन का उपयोग कम होता हो, क्योंकि हमारे यहाँ 4 करोड़ टन यूरिया आता है, 3 करोड़ टन डीएपी पड़ रहा है, 1 करोड़ टन पोटास चल रहा है, 2 लाख करोड़ रुपया सरकार का विदेश जा रहा है। ऐसे में हमको उन फसलों को पैदा करना होगा, एक नींबू के बनने में 100 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूं बनने में 1000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो चावल बनने में 3000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो मछली बनने में 16000 लीटर पानी लगता है। तो जो पानी की जो बचत है, एक तो हम इस तरह मेड़बंदी, मैंने जैसे कहा कि बगैर सरकार की सहायता कि आप अपना फावड़ा लीजिए, मेड़ अपनी बाउंड्री बनाइए, उसके ऊपर पेड़ लगाइए, वृक्ष की बात नहीं कर रहा, वृक्ष और पेड़ में अंतर है, गेहूं का तना पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, लेकिन बरगद वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, तो ऐसे पेड़ लगाइए जिसके पत्ते जमीन पर गिरे, जैविक खाद बन जाए, और दूसरी बात जो जहर मुक्त भोजन फल, इनको बचाने की जरूरत है। तीसरी बात मैं और कहूंगा कि जो बच्चे हैं देश में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं केजी से पीजी तक में, उनको हमको जल ज्ञान कराना पड़ेगा एक, क्योंकि 16 हमारे 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1212 विश्वविद्यालय हैं, 1 से 12 तक के हमारे यहाँ 1,200,000 प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल हैं। हमको एक जल विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा, हमको वाटर लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, एक वाटर म्यूजियम बनाना पड़ेगा, पानी की पाठशालाएं शुरू करनी पड़ेंगी, किसानों के साथ हमको संवाद करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक किसान अपने लिए पानी नहीं यूज कर रहा, समाज के लिए कर रहा है। एक मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं, उनको 2,000 लीटर पर मिनट हमको पानी चाहिए, एक मिनट में 20,000 बोतल तैयार होती है पानी की दुनिया में, एक मिनट में 20,000 टन मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बह करके ये उस जा रही है समुद्र में, 16,000 पेड़ दुनिया में काटे जाते हैं, पर व्यक्ति 100 पेड़ चाहिए। तो ऐसे में एक आदमी परमात्मा के यहाँ जाता है, 5 क्विंटल लकड़ी अपने साथ ले जाता है। तो ऐसे में हमको बड़ी संख्या में समुदाय के आधार पर, जो मेरे पुरखों का ज्ञान था जल ज्ञान, जो हमारी ट्रेडिशनल वाटर इंजीनियरिंग थी, तालाब कुआं छोटे नदियां, इनको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है।
बिल्कुल,
क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अमृत योजना के अंतर्गत हर जिले में 50,000 तालाब बनाए, अशोक जी भी बैठे हैं, बड़ा काम हम लोगों ने देखा इनका, करीब 25 साल से हम देख रहे हैं। तो ऐसे में मेरा आपके माध्यम से और आकाशवाणी के श्रोताओं के माध्यम से एक निवेदन है कि वे आज जल को जगदीश माने, परमेश्वर माने, परमात्मा माने,
और जल संरक्षण करें, हम बर्बाद ना करें। दिल्ली से एक और श्रोता है आशीष जी।
नमस्कार सभी को।
जी अपना सवाल पूछें।
जी मैं आशीष मल्होत्रा दिल्ली से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले पानी की समस्या जो थी वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में थी, लेकिन अब गाँव में भी हमको ये समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल हो या इंजन के सेट हो, किसी भी तरीके से अब हमको सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सब पे क्या समाधान हो सकते हैं और किस तरीके से हमको इनका संरक्षण करना चाहिए?
मेरा अपना आपसे व्यक्तिगत, आपने अच्छा प्रश्न किया है। हमारा मानना यह है कि हमें एक वाटर बस्टिंग बनानी चाहिए अपने गाँव की। हर गाँव में मेघ महाराज 3,000 किलोमीटर से चल के आपके गांव में फ्री में पानी लेके आते हैं, बूंद बूंद पानी लेके आते हैं। बूंद माने समुद्र, बूंद माने नदी, बूंद माने पहाड़, बूंद माने तालाब। हम उड़ता हुआ बादल, उड़ती हुई नदियां हैं। हम इस पानी को कैसे बहने से रोक लें? अगर दौड़ रहा है पानी तो उसको चलना सिखाएं, अगर चल रहा है तो उसको रोक दें, और जो रुका हुआ पानी है वो पृथ्वी माता के पेट पे जाए। ऐसा प्रयास हम सब मिलकर करेंगे तो 140 करोड़ व्यक्ति जब ये ठान लेंगे तो हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं पड़ेगी।
जी अशोक जी, एक और श्रोता है जो उनका व्हाट्सएप पे आया है सवाल कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है और इसके बारे में कंकड़िया कहाँ से ली जाती है।
जैसे मैंने बताया, हर जिले में अभी वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड जल शक्ति केंद्र। इस जल शक्ति केंद्र में उस एरिया के लिए उपयुक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी देंगे। देखो, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सब जगह में एक जैसे नहीं होता है। राजस्थान में जो डेसर्ट एरिया है उसी के अलग तरीके होता है, जिसके अंडर सबसेटा रॉक है उसी के लिए अलग एरिया सबसेट होता है। आबोहवा की तरह से भी चेंजेस, क्योंकि लद्दाख में दे कैन मेक आइस कोन, बट वो तो केरल में तो वो नहीं कर सकेंगे। सो आबोहवा और सॉइल सबस्टेटा के हिसाब से अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने के लिए जल शक्ति केंद्र अभी खोला गया है। तो दे कैन कॉन्टैक्ट लोकल जल शक्ति केंद्र विच विल बी इन द म्युनिसिपैलिटी और कलेक्ट्रेट, वो जानकारी देंगे,
तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। और आप अपना अगर वाटर हार्वेस्टिंग वाकई में करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में से एक है 2030 तक सबको किफायती और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना, कितने करीब पहुंच गए हैं हम उसके?
हाँ ठीक है, ये देखो दिस ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज आंकड़े अलग बात है, जो ग्राउंड में रियलिटी वो भी देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो नल हर घर नल का जो जल जीवन मिशन शुरू किया था, कई जगह पे अभी वाटर दूर दूर से वाटर सोर्स से एक पानी घर घर में लाने की प्रयत्न कर रहे हैं, कई जगह पे हो भी गया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चला जा रहा है कि जहाँ पे वाटर बॉडीज को बचाने के काम कर रहे हैं, तालाबों का गहरीकरण हो रहा है, इन सब के वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड एज इंक्रीज, ऑल दीज थिंग्स विल मेक बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर टू द पीपल. तो वी आर नॉट वेरी फार अवे, वी विल बी अचीविंग इट.
जी हाँ, तो यही कह सकते हैं कि जो हमारी नदियाँ और तालाब से आने वाला पानी हमारा करंट अकाउंट है, और जमीन के नीचे गहराई में पानी के भंडार हमारे सेविंग्स अकाउंट है. इसलिए भविष्य में सतत जलापूर्ति चाहिए तो आज इसे बचाना ही होगा. हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे साथ जुड़े, और आज की चर्चा में आप दोनों विशेषज्ञों का शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद. श्रोताओं, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी सोमवार को ठीक 9:30 बजे. तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की. नमस्कार.
बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.